محمد عبد وآله وصحبه وبارك وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله. میں مختصر چند برکت کے لیے گفتگو چند کلمات پیش کروں گا. آج کل مسلمانوں میں اللہ تعالی کی بات پر مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے میں بڑی سستی اور تساہلی کرتے ہیں. کچھ لوگ تو نماز پڑھ کر دعا مانگتے بھی نہیں اور کاروبار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. دعا کو ایک بہت ہلکی اور معمولی چیز سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جو مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتا ہے یعنی دعا مانگنے کو وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے, ایسے متکبرین کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. دعا بڑی امپارٹنٹ چیز ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادة. دعا ماننا ایک عبادت ہے, جس طرح رمضان میں روزے, پانچ وقت نمازیں, زکات وغیرہ عبادات ہیں, اسی طرح ایک اہم عبادت دعا کی ہے. اور اس دعا مانگنے کے لیے قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ حکم دیا ہے, ادعونی استجب لکم, اے لوگوں مجھ سے دعا مانا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. رب فرماتا ہے میں دعا قبول کروں گا اور ہم استقبال کرتے ہیں, منہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑی نادانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من یسرہ ان یستجیب اللہ له فی الشدائد والقرب فلیسر الدعاء فی الرخاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو اس بات سے خوشی ہو اور جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ جب سخت مصیبتیں میرے اوپر آئیں اور پریشانیوں میں میں گر جاؤں تو اللہ تعالی میری دعا قبول کرے, جس کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ مصیبتوں میں گرنے کے بعد جب میں دعا کروں تو اللہ تعالی میری دعا قبول کرے, تو حضور ایسے شخص کو فارمولا بتاتے ہیں, نسخہ بتاتے ہیں, فل یسر الدعاء فی الرخاء. اے لوگو, جب خوشحالی کے وقت میں ہو, جب کوئی پریشانی تم کو نہ ہو, تو ایسے وقت میں خوب دعا مانا کرو. خوشحالی میں, عیش و آرام میں لمبی لمبی رو رو کر دعا مانا کرو. इसका नतीजा ये निकलेगा, सरकार फरमाते हैं कि जब तुम पर कोई शदीद तकलीफ और परेशानी उतरे और ऐसे वक्त में जब तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगोगे तो परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआ बहुत जल्द कबूल कर देगा और तुम्हारी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आज हमने क्या किया है, जब परेशानी आती है तब दुआ मांगो और ऐशो आराम और खुशहाली के जमाने में जल्दी से खा करते हैं, ये उल्टा मामला हो गया है। हुजूर फरमाते हैं खुशहाली में खूब दुआ मांगो तो तकलीफ आने में थोड़ी दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी और तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लोग ने जो तरीका बताया है उस तरीके से आपने दुआ मांगे तो उसके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। और एक तरीका हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब दुआ मांगो तो अव्वल और आखिर मुझ पर दुरूद पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ लोगे। उलमा फरमाते हैं तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई परिंदा है, उसको अगर उड़ना है तो उसको दो बाजू चाहिए, बाजू अगर उसके दोनों स्थान और सलामत है तो एक ही फड़फड़ाने में वो ऊपर की तरफ जहां तक चाहेगा वो उड़ने में कामयाब होगा। और अगर उसके बाजू तोड़ दिए जाएं, उसके पर उखाड़ दिए जाएं, तो ऐसा परिंदा ऊपर नहीं उड़ सकता। ऐसे ही दुआ एक परिंदे की तरह है और अव्वल और आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लेना उसका बाजू। जब इस दुआ के परिंदे को मजबूत बाजू मिल जाता है तो ये परिंदा जो तुम्हारे मुंह के पिंजरे से निकला है, ये दुआ का परिंदा जो मुंह के पिंजरे से निकला है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का बाजू लग गया तो वो इतनी तेजी के साथ फजा में उठता है कि अल्लाह तआला की कबूलियत के गेट तक फौरन पहुंच जाता है और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती है। दुआओं की कबूलियत के लिए ये भी एक तरीका है और शिद्दत और परेशानी में दुआ कबूल होने के लिए आप लाजिम पकड़ लो कि दुआ से कभी इस्तिग़फ़ार और उम्मत फेरना। कुरान मजीद वहीद नाज़िल फरमाता है इन्नल्लज़ीन इस्तकबरू अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो मेरी दुआ से मेरी बारगाह में दुआ मांगने से मुंह फेरता है वो जहन्नम में शरीर बनाकर फेंक दिया। तुम मांग किससे रहे हो? अरे दुनिया से मांगो तो बेइज्जती का सबब है, लेकिन उस गैरत वाले इज्जत वाले मौला से मांगोगे तो वहां बेइज्जती नहीं है बल्कि बेइज्जतों को इज्जत मिल जाया करती है। इसलिए मेरे दोस्तों दुआ में रूह गिड़गिड़ाओ और आसानियों के जमाने में दुआ मांगो, परेशानियां इंशाअल्लाह खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। अल्लाह ताला हमको आसानियों में खुशहालियों में दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिल दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فإذا أردت بإبعادك فأقبضنا إليك غير مفتون. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم وثبت أقدامنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. مولا كريم كان سادة بلدان واحد हमारी दुआओं में असर पैदा करना।
आमीन।
मौला अपने कर्म से हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी परेशानियों को तकलीफों को अपने कर्म से मटबूकों के सदे से दूर फरमा दे। आमीन। मौला जो परेशान हाल है उन्हें खुशहाल बना दे, जो बेरोजगार है उन्हें जायज और अच्छी रोजियां अता करना, जो रोजगार वाले हैं मौला उनकी जमातियों में इस्लामी खैरों का अता फरमा, इलाहदालमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो बे औलाद हैं मौला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को माँ बाप का वफादार और अल्लाह की बारगाह का नेको कार बना दे, इलाहदालमीन हम तेरी बारगाह में गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा, और हमें वो दे जिससे तू राजी और तेरा हबीब राजी हो जाए, और जब दुनिया से जाए तो जबानों पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की सैयदना व मौलाना محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ये मस्जिद बनाने वाले क्या नाम बताए? अहमदी सुल्ताना, उनकी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उनको सेहत और सलामती अता फरमाए, और जो मस्जिद बनाने का इरादा है इसमें जो काम बाकी है जल्द से जल्द मौला उसे पूरा फरमा दे, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबीही अजमईन.